मानक उद्घाटन नरेशन एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनका नाम लेते ही जहन में कविता, प्रेम और क्रांति की तस्वीरें उभर आती हैं। पाब्लो नेरुदा।
पाब्लो नेरुदा, हाँ बिल्कुल।
एक ऐसा कवि जिसकी कलम ने सिर्फ इश्क के नगमे ही नहीं लिखे, बल्कि एक पूरे महाद्वीप की धड़कनों, उसके संघर्षों और सपनों को भी आवाज दी।
सही कहा, 20वीं सदी का शायद ही कोई ऐसा मोड़ हो जिसकी गूंज उनकी नज़मों में ना मिले।
तो आज हम उन्हीं की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, रिकार्डो एलिजर नेफ्ताली रेस बासु आल्टोस से पाब्लो नेरुदा बनने तक का उनका जो सफर है वो खुद एक महाकाव्य जैसा है।
रिकार्डो एलिजर, ये उनका असली नाम था?
हाँ, रिकार्डो एलिजर नेफ्ताली रेस बासुआल्टो चिली के छोटे से शहर पराल में जन्मे थे, लेकिन आवाज पूरी दुनिया में गूंजी।
तो आज हम इसी सफर को देखेंगे, कैसे एक इंसान में इतनी सारी दुनियाएं सिमट सकती हैं, कवि, राजनेता, राजनायक।
हाँ, और प्रेम, प्रकृति, क्रांति, इन सबको वो कौन सी डोर थी जो एक साथ बांधे रखती थी, यही समझने की कोशिश करेंगे।
तो शुरुआत नाम से ही करते हैं, ये रिकार्डो से पाब्लो नेरुदा बनना, वो भी सिर्फ 16 साल की उम्र में।
हाँ, ये सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था, ये एक तरह से अपनी पहचान गढ़ने की शुरुआत थी।
अच्छा, कैसे?
देखिए, पिता रेलवे में थे, सख्त मिजाज, और कविता उन्हें पसंद नहीं थी, मतलब वक्त की बर्बादी मानते थे।
हाँ, सुना है मैंने।
तो ऐसे में एक चेक कवि थे यान नेरुदा, उनसे प्रेरित होकर ये नाम रखना एक तरह का कवच भी था।
पिता से अपनी महत्वाकांक्षा छुपाने के लिए।
बिल्कुल, और साथ ही अपनी शर्तों पर अपनी दुनिया बनाने का पहला कदम, मतलब वो शुरू से ही अपनी राह खुद बनाने वाले थे।
कमाल है, अपनी पहचान का पहला पत्थर, वो भी इतनी कम उम्र में।
हाँ,
और ये सब उस वक्त हो रहा था जब दुनिया भी बदल रही थी, चिली भी और पूरी दुनिया भी।
बिल्कुल, 1904 में उनका जन्म हुआ, वो 20वीं सदी की शुरुआत थी। चिली में नाइट्रेट से पैसा आ रहा था, आधुनिकीकरण हो रहा था।
लेकिन साथ में असमानता भी बढ़ रही होगी।
बहुत ज्यादा अमीरी गरीबी की खाई चौड़ी हो रही थी, और दुनिया में भी देखिए, पुराने साम्राज्य ढह रहे थे, अमेरिका उभर रहा था, पनामा नहर, सब कुछ बदल रहा था, एक बेचैनी का माहौल था।
और साहित्य में क्या चल रहा था उस वक्त लातिनी अमेरिका में?
वहां मॉडर्निज्मों का असर कम हो रहा था, वो थोड़ी अलंकृत शैली थी, उसकी जगह ले रहा था यूरोप का अवांटगार्ड, खासकर अति यथार्थवाद, सुरियलिज्म जिसे कहते हैं।
अच्छा, मन की गहराइयों में उतरने वाली बात।
हाँ वही, और माहौल बड़ा उर्वर था। चिली में ही विसेंट हुइदोब्रो थे, पेरू में सेसर वायेहो, अर्जेंटीना में बोर्खेज, और खुद चिली में गैब्रिएला मिस्ट्राल।
गैब्रिएला मिस्ट्राल, हाँ, इनका जिक्र उनके शुरुआती जीवन में भी आता है।
बिल्कुल आता है।
उनके बचपन पर लौटते हैं थोड़ा। पराल में जन्म, माँ का जल्दी गुजर जाना, पिता का रूखापन, ये सब कैसे ढाल रहा था उन्हें?
गहरा असर पड़ा इन सबका। माँ की कमी शायद उनकी कविताओं की उदासी में झलकती है। पिता का विरोध, उसने उन्हें जिद्दी बनाया। लेकिन उनकी सौतेली माँ थी त्रिनिदाद कांड्या मारवेर्दे, जिन्हें वो मामाद्री कहते थे, उन्होंने बहुत प्यार दिया।
और टेम्यू को, वो जगह,
टेम्यूको तो जैसे उनके रगों में बस गया। दक्षिणी चिली का वो इलाका, जंगल, बारिश, ज्वालामुखी, वहां के मूल निवासी मापुचे लोग, ये सब उनकी कविता के बिंब बन गए। प्रकृति उनकी कविताओं में बोलती है।
और वहीं गैब्रिएला मिस्त्राल से मुलाकात हुई, जो बाद में खुद नोबेल विजेता बनी।
हाँ, ये बहुत अहम मुलाकात थी। मिस्त्राल वहां स्कूल प्रिंसिपल थी, उन्होंने इस शर्मीले लड़के की प्रतिभा को पहचाना,
अच्छा,
न सिर्फ हौसला दिया बल्कि रूसी साहित्य से परिचय कराया। टॉल्स्टॉय, दोस्तोयेव्स्की, सोचिए उस छोटे से कस्बे में ये कितना बड़ा सहारा रहा होगा।
हाँ, शायद इसीलिए 13 साल की उम्र में ही उनकी पहली कविता छप गई थी।
बिल्कुल उसी हिम्मत से।
फिर वो सैंटियागो आ गए पढ़ने, यूनिवर्सिटी।
हाँ, 1921 में फ्रेंच पढ़ने आए थे यूनिवर्सिटा दे चिली में।
वहां का माहौल अलग होगा बिल्कुल।
एकदम अलग, राजधानी थी, बोहेमियन माहौल, साहित्यिक बहसें, यहां उनका दायरा बड़ा। वॉल्ट विटमिन को पढ़ा उन्होंने।
अमेरिकी कवि विटमिन।
हाँ, उनकी खुली शैली, वो विस्तार, उससे निरुदा बहुत प्रभावित हुए। यही वो निरुदा तैयार हो रहा था जिसने आगे चलकर दुनिया को चौंकाया।
और फिर आया धमाका, वेंते पोएमस दे अमोर यू ना कंस्योन देसेस्पेरादा, 20 प्रेम कविता हैं।
और एक हताश गीत। हाँ, 1924 में सिर्फ 20 साल के थे वो।
ये किताब तो जैसे छा गई थी पूरी तरह।
बिल्कुल, रातों रात स्टार बन गए लातिनी अमेरिका में। वजह शायद ये थी कि इसमें युवा मन की सारी उथल पुथल थी, प्रेम की वो शिद्दत, वो उदासी, वो टीस, वो कामुकता,
जिसे लोग महसूस तो करते थे पर कहते नहीं थे शायद।
हाँ, निरुदा ने उसे बिना लाग लपेट के कह दिया, और भाषा एकदम सीधी सरल पर भावनाओं से भरी हुई, प्रकृति के बिंबों का इस्तेमाल, रात, तारे, हवा, धरती, कमाल का था वो।
आज भी बहुत पढ़ी जाती है किताब।
स्पेनिश भाषा में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से है।
लेकिन नेरुदा सिर्फ प्रेम कविताओं तक नहीं रुके, उनका कैनवस बड़ा होता गया। उनकी एक धारणा थी पोएशिया एम्प्योरा, अशुद्ध कविता। ये क्या था
अशुद्ध कविता? ये उनके कलात्मक दर्शन का आप कह सकते हैं मूल है। वो उस वक्त की सोच को चुनौती दे रहे थे कि कविता सिर्फ सुंदर चीजों के बारे में हो।
अच्छा,
नेरुदा ने कहा नहीं, कविता को जिंदगी जैसा होना चाहिए, उसमें सब कुछ आए, पसीना, धूल, घिसी हुई लकड़ी, बाजार का शोर, सब कुछ।
मतलब कविता को आम आदमी के करीब लाना।
बिल्कुल, सुंदरता के महलों से उतारकर जमीन पर लाना, एक तरह से कविता का लोकतंत्रीकरण।
तो ये सिर्फ विषय चुनने की बात थी या लिखने के तरीके पर भी असर पड़ा?
नहीं, ये सिर्फ विषय नहीं था, ये एक नजरिया था। इसी नजरिए ने उन्हें हिम्मत दी कि वो प्रेम की नजदीकी से निकलकर स्पेन के गृहयुद्ध या मजदूरों के संघर्ष पर भी लिखें।
हाँ, वो निजी और राजनीतिक को बड़ी आसानी से मिला देते थे अपनी कविताओं में।
बिल्कुल, उन्होंने दिखाया कि ये दोनों अलग नहीं हैं, और राजनीतिक प्रतिबद्धता कला को कमजोर नहीं बल्कि ज्यादा ताकतवर बना सकती है।
उनकी कविताओं में रूपकों का, मेटाफर्स का इस्तेमाल भी बहुत खास माना जाता है, नेरुदियन मेटाफर।
हाँ, उनके मेटाफर अक्सर तर्क पर नहीं बल्कि गहरी भावनात्मक जुड़ाव पर टिके होते हैं। वो दो बिल्कुल अलग चीजों को जोड़कर एक चौंकाने वाला बिंब बनाते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे 20 प्रेम कविताओं में वो स्त्री शरीर को पृथ्वी के नक्शे की तरह देखते हैं, या तुम्हारी हंसी तितली की तरह है। ये अतार्किक लग सकता है पर असर गहरा छोड़ता है।
प्रकृति और इंसान, खासकर भावनाएं, इनके बीच पुल बनाते थे वो।
हाँ, ये उनकी खासियत थी, अति यथार्थवाद का भी असर था इसमें।
तकनीकी तौर पर भी इन्होंने काफी कुछ नया किया, मुक्त छंद, फ्री वर्ड्स।
हाँ, मुक्त छंद ने उन्हें बड़ी आजादी दी। विटमिन से उन्होंने कैटलॉग तकनीक सीखी थी, चीजों की लंबी सूची बनाना, उसे लैटिनी अमेरिकी संदर्भ में ढाला, खासकर कैंटो जनरल में।
और ओड, वो तो पुरानी किताब है।
हाँ, पर नेरुदा ने उसे नया जीवन दिया। पारंपरिक ओड तो राजाओं या बड़े विचारों पर लिखे जाते थे, नेरुदा ने प्याज पर, टमाटर पर, अपनी जुराबों पर ओड लग दिए।
अपनी जुराबों पर?
हाँ, रोजमर्रा की चीजों का महिमा मंडन, ये उनकी अशुद्ध कविता वाली सोच ही थी।
कमाल है, मतलब विषय वस्तु की कोई सीमा ही नहीं रखी उन्होंने।
कोई सीमा नहीं, भूगर्भ विज्ञान से लेकर राजनीतिक यातना तक, मछुआरों से लेकर महाद्वीप के भूगोल तक, सब कुछ कविता बन सकता था उनके लिए।
उनका मानना था कि कवि समाज की आवाज है।
हाँ, सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब।
20 प्रेम कविताओं के बाद एक और अहम किताब आई, रेसिडेंसिया एन ला तेरा, पृथ्वी पर निवास। ये बहुत अलग थी कहते हैं।
जमीन आसमान का फर्क, ये उस दौर की किताब है जब वो कौंसुल थे बर्मा, सीलोन, जावा में। वहां का अकेलापन, अजनबीपन, दुनिया की निरर्थकता का एहसास,
अच्छा,
वो सब इस किताब में है। इसमें वो सरलता या रोमानी उम्मीद नहीं है। भाषा ज्यादा जटिल है, बिंब गूढ़ हैं, डरावने भी। अलगाव, क्षय, निराशा, ये इसके मुख्य स्वर हैं।
मशहूर कविता वॉकिंग अराउंड इसी में है।
हाँ बिल्कुल, जो शहरी जीवन की घुटन दिखाती है। ये अति यथार्थवाद का चरम था उनके काम में।
और फिर आया स्पेनिश गृह युद्ध जिसने सब कुछ बदल दिया।
हाँ, 1936-39 ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वो मैड्रिड में कौंसुल थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे गणतंत्र को कुचला गया।
और उनके दोस्त फेडरिको गार्सिया लोरका।
हाँ, लोरका की हत्या फासीवादी ताकतों ने कर दी। इस घटना ने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें लगा कि अब सिर्फ सुंदर कविता लिखना अनैतिक है, तटस्थ रहना नामुमकिन है।
और यहीं से उनकी कविता पूरी तरह राजनीतिक हो गई।
बिल्कुल, पूरी तरह प्रतिबद्ध।
इसी का नतीजा थी इस्पानिया एन एल कोराजॉन, स्पेन हृदय में।
हाँ, 1937 में आई ये किताब। इसमें अब वो जटिलता नहीं, सीधी पुकार है। लोरका के लिए शोक है, फांसीवाद के खिलाफ गुस्सा है, भाषा प्रत्यक्ष है, उद्देश्य साफ, लोगों को जगाना।
ये प्रतिबद्ध कविता का दौर शुरू हुआ।
सही कहा।
और इस प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा रूप उनका महाकाव्य कैंटो जनरल, सामान्य गीत।
हाँ, कैंटो जनरल 1950 में आई, ये उनका मैग्नम ओपस है। एक पूरी दुनिया है इस किताब में।
क्या है इसमें खास?
इसमें उन्होंने पूरे लातिनी अमेरिका का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, लोग, मिथक, शोषण, संघर्ष, सपने, सब कुछ समेटने की कोशिश की है। मार्क्सवादी नजरिए से लिखा गया महाकाव्य है ये।
और इसका सबसे मशहूर हिस्सा
आल्तुराज दे माचू पिच्चू, माचू पिच्चू की ऊंचाइयां, इनका खंडहरों पर खड़े होकर इतिहास और श्रम पर गहरा चिंतन।
और ये सब उन्होंने निर्वासन में या छिपते हुए लिखा?
ज्यादातर हिस्सा, हाँ, ये हैरत की बात है।
फिर उदास एलिमेंटल्स, मॉली कोड, इसमें वो फिर सरल हो गए।
हाँ, कैंटो जनरल के बाद वो जैसे फिर जमीन पर लौटे। 1954-59 के बीच आएंगे ऑड्स, भाषा एकदम सरल, रोजमर्रा की,
साधारण चीजों पर।
हाँ, जैसा हमने पहले कहा, प्याज, नमक, हवा। ये कविताएं काफी हद तक कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार के लिए लिखी गई थीं। मकसद था आम लोगों तक पहुंचना।
अच्छा, ये राजनीतिक उद्देश्य भी था?
हाँ, कविता को जनता का हथियार बनाना, और ये उनके भौतिकवादी दर्शन को भी दिखाता है, इसी दुनिया की चीजों में सौंदर्य खोजना।
बाद में प्रेम कविताएं भी फिर से आईं, मतिल्दे उरुतिया के लिए।
हाँ, लोस वर्सेस दिल का पतान, सी एन सोनेतोस दे अमोर, इनमें वो युवा आवेग नहीं बल्कि एक परिपक्व प्रेम का ठहराव है।
और उनका संस्मरण,
कॉन्फियसो के ए विविदो, मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने जिया है, उनकी मौत के बाद छपा, उनके जीवन और विचारों को समझने के लिए बहुत जरूरी।
कविता के साथ साथ उनका राजनीतिक जीवन भी बड़ा तूफानी रहा, कौंसुलर पद।
हाँ, पर वो सिर्फ नौकरी नहीं थी, बर्मा, सिलोन, स्पेन, इन जगहों के अनुभवों ने उनकी कविता को सींचा, और स्पेन में तो उन्होंने कमाल का काम किया।
वो शरणार्थियों वाला किस्सा?
हाँ, एसएस विनिपेग जहाज, गृह युद्ध के बाद फंसे लगभग 2000 स्पैनिश रिपब्लिकन शरणार्थियों को निकालकर चिली लाए, ये उनकी मानवीय प्रतिबद्धता थी।
फिर वो चिली की राजनीति में आए, सेनेटर बने।
1945 में कम्युनिस्ट पार्टी से, मजदूरों के हक में बोलते थे,
लेकिन फिर सरकार से टकराव हुआ।
हाँ, 1948 में राष्ट्रपति गोंजालेस विदेला, जिनका उन्होंने समर्थन किया था, वो कम्युनिस्ट विरोधी हो गए। नेरुदा ने संसद में उनके खिलाफ जोरदार भाषण दिया, यो एक्यूजो, मैं आरोप लगाता हूँ,
और उसके बाद
गिरफ्तारी का वारंट निकल गया,
और फिर वो फरारी, एंडीज पर्वत पार करना।
हाँ, लगभग 13 महीने चिली में ही छिपते रहे, फिर 1949 में घोड़े पर बैठकर बर्फीले एंडीज को पार किया और अर्जेंटीना भागे। बहुत खतरनाक सफर था वो।
इसी दौर में कैंटो जनरल लिखा।
हाँ, निर्वासन का ये दौर उनके लेखन के लिए बहुत अहम रहा। 1952 में जाकर वापस चिली लौट पाए।
आखिरी सालों में भी वो राजनीति में सक्रिय रहे, सेल्वाडोर आयंदे के साथ।
आयंदे उनके पुराने दोस्त थे। जब आयंदे राष्ट्रपति बने तो नेरुदा को फ्रांस में राजदूत बनाया।
इतने बड़े जीवन को सम्मान भी बहुत मिले होंगे, नोबेल पुरस्कार।
जी, 1971 में साहित्य का नोबेल। अकादमी ने कहा कि उनकी कविता एक महाद्वीप की नियति और सपनों को जीवंत करती है।
ये तो बहुत बड़ा सम्मान था,
न सिर्फ उनके लिए, पूरे लातिनी अमेरिका के लिए, लेकिन विवाद भी हुआ।
क्यों?
शीत युद्ध का दौर था, नेरुदा कम्युनिस्ट थे, सोवियत संघ के मित्र, तो पश्चिमी देशों में काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन लातिनी अमेरिका ने इसे अपनी पहचान की मान्यता माना।
और भी सम्मान मिले थे उन्हें?
हाँ, चिली का राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार तो 1945 में ही मिल गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, लेनिन शांति पुरस्कार, कई मानद डॉक्टरेट, वो सचमुच विश्व नागरिक थे।
अब अगर उनकी विरासत की बात करें, उनका असर कैसा रहा?
अभूतपूर्व। लातिनी अमरीका में उन्हें सिर्फ कवि नहीं, कवि कहा जाता था, जैसे वो कविता का ही दूसरा नाम हो।
बात की कवियों पर भी असर डाला होगा।
बहुत। ऑक्टावियो पाज, निकानोर पारा, सबको उनके संदर्भ में ही खुद को देखना पड़ा। दुनिया भर में अनुवाद हुए, रॉबर्ट ब्ली, मर्विन जैसे अमेरिकी कवियों को भी प्रभावित किया।
राजनीतिक प्रतिबद्धता और कलाकार में नयापन,
ये उनका मॉडल था।
बिल्कुल, लेकिन कुछ सवाल भी उठे हैं उन पर, आलोचनाएं भी हुई हैं।
हाँ, और ये जरूरी भी है। स्टालिन के प्रति उनकी भक्ति की कड़ी आलोचना हुई है, खासकर बाद के सालों में।
अच्छा।
नारीवादी आलोचना भी हुई है, उनकी विकलांग बेटी मालवा मरीना के प्रति उनकी उपेक्षा पर सवाल उठे हैं और उनके संस्मरण में एक बलात्कार का जिक्र है जिस पर आपत्ति जताई गई है।
तो मतलब उनकी शख्सियत काफी जटिल थी, विरोधाभासों से भरी हुई।
बिल्कुल, कोई भी इंसान सिर्फ सफेद या काला नहीं होता।
लेकिन इन सब के बावजूद उनकी कविता की ताकत तो आज भी है।
निश्चित रूप से उनकी प्रेम कविताएं आज भी करोड़ों लोग पढ़ते हैं, महसूस करते हैं।
हाँ, वो तो हैं।
और उनकी राजनीतिक कविताएं कैंटो जनरल जैसी, वो आज भी सामाजिक न्याय के संघर्षों को प्रेरणा देती हैं। उनकी अशुद्ध कविता की सूच हमें याद दिलाती है कि कविता हमारे आसपास है, जीवन में है।
वो मानवीय अनुभव की पूरी रेंज को पकड़ते हैं, प्रेम, पीड़ा, सौंदर्य, क्रूरता।
इसीलिए वो आज भी प्रासंगिक हैं।
उनके कुछ शब्द तो अमर हो गए, जैसे वो लाइन, प्रेम इतना छोटा है, भूलना इतना लंबा।
इस तन कोर्तो एल अमोर, इस तन लार्गो एल ओल्विडो। क्या खूब कहा है, प्रेम के बाद यादों की टीस।
या फिर, मैं आज रात सबसे उदास पंक्तियां लिख सकता हूँ।
पोएदो स्क्रिबीर लोस वेर्सोस मास त्रिस्तेस एस्तानोचे। हानि और विरह का दर्द कितना सीधा और गहरा।
और नोबल भाषण में वो कहते हैं, कविता मुझे ढूंढते हुए आई।
मुझे नहीं पता वो कहाँ से आई, रचनात्मक प्रेरणा का वो रहस्य, जैसे कला खुद कलाकार को चुनती है।
एक और लाइन बहुत मशहूर है, मैं तुम्हारे साथ वो करना चाहता हूँ जो वसंत चेरी के पेड़ों के साथ करता है।
Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos.
प्रेम का जुनून और जीवन देने की शक्ति, प्रकृति और प्रेम कैसे घुले मिले हैं उनमें।
उनके जीवन से जुड़े कुछ और रोचक पहलू, पिता की नाराजगी, मिस्त्राल का साथ,
एंडीज पार करना, एसएस विनिपेग और उनके घर इस्ला नेग्रा।
हाँ, वो घर तो म्यूजियम बन गया है, समंदर किनारे।
बिल्कुल, उनके संग्रह, उनकी पसंद, सब कुछ है वहाँ।
और उनकी मौत, उस पर भी शक जताया जाता है।
हाँ, आधिकारिक कारण तो कैंसर था, पिनोशे के तख्ता पलट के कुछ ही दिन बाद, लेकिन शक है कि शायद जहर दिया गया था। जांचें भी हुई पर रहस्य बना हुआ है।
उनकी जिंदगी पर फिल्में भी बनी, इल पोस्टिनो तो बहुत चली।
हाँ, इल पोस्टिनो 1994 बहुत प्यारी फिल्म थी, हालांकि कहानी काल्पनिक थी ज्यादातर। उसने नेरुदा को बहुत लोगों तक पहुंचाया,
एक रोमांटिक छवि बनाई।
हाँ, और फिर पाब्लो लरेन की फिल्म आई नेरुदा 2016, वो ज्यादा जटिल थी शायद।
हाँ, वो पारंपरिक बायोपिक नहीं है, 1948 की फरारी पे है, पर असलियत और कल्पना से खेलती है। वो नेरुदा के मिथक को कुरेदती है, पूछती है कि हम किसी लेखक को कैसे जानते हैं।
दिलचस्प नजरिया है।
बिल्कुल।
तो ये थे पाब्लो नेरुदा, कवि, क्रांतिकारी, प्रेमी, एक ऐसा जीवन जो खुद कविता था।
सही कहा, उनकी अशुद्ध कविता की तलाश, साधारण में असाधारण देखने की नज़र और जीवन को उसकी पूरी जटिलता में गले लगाने का साहस, यही उन्हें खास बनाता है।
उनकी विरासत पर बहस हो सकती है, लेकिन उनकी आवाज को अनसुना नहीं किया जा सकता।
बिल्कुल नहीं।
और शायद सोचने वाली बात यही है कि आज के दौर में जब दुनिया फिर बंट रही है, क्या किसी कवि की आवाज नेरुदा की तरह व्यक्तिगत और सार्वजनिक, कला और राजनीति, दिल और दुनिया, इनके बीच पुल बन सकती है। क्या हमें आज फिर एक अशुद्ध कविता की जरूरत है जो जीवन की हर सच्चाई को बिना डरे अपना सके। मानक समापन नरेशन, फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।